ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਹਫਤਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਕਾ ਹੋਸਟ, ਆਪਕਾ ਦੋਸਤ ਹੁਸੈਨ ਕਾਸਿਮ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ 5:01 ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਫਾਲ ਕੀ ਆਮਦ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਛਾਓ ਮੇ ਠੰਡ ਔਰ ਧੂਪ ਮੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ, ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਮਾਈਨ, ਹਮ ਜੈਸਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਹਮ ਸਭ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੋ ਹਮ ਆਪ ਹਮੇ ਨੈਟ ਪਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਆਪਕੋ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ eawaz.com ਪਰ। ਲਾਈਵ ਕਾ ਆਇਕਨ ਕਲਿੱਕ ਕੀਜੀਏ, ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੈਟ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਨੈਟ ਦੋਨੋਂ ਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਤੇ, ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਯਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਨੰਬਰ ਹੈ 6475571017। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, 6475571017। ਯੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਜੀਏ, ਏਕ ਬੈਲ ਹੋਗੀ ਔਰ ਆਪ ਹਮਸੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਆਪ ਹਮੇ ਫੋਨ ਪਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਵਾਬਸਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਸੇ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ, ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਾ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਪੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472012213, 6472012213, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਕੇ ਕਾਲ, ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-6201778, 416-6201778। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸਮਾਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ WTOR 770 AM ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਕੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਿਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹੋ, ਕਿਸੀ ਮੰਦਿਰ ਸੇ, ਕਿਸੀ ਚਰਚ ਸੇ, ਕਿਸੀ ਮਸਜਿਦ ਸੇ, ਕਿਸੀ ਮਾਮਬਾਰਗਾ ਸੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੋ ਹਮ ਆਪਕੀ ਔਨ ਏਅਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਿਸ, ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੇ ਤੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਖੁਦ ਔਨ ਏਅਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਜੀਏ 416-6201778, ਯੇ ਸਟੂਡੀਓ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਲਿਸਨਰ ਸੇ, ਹਮਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਮਾਈਨ ਸੇ ਜੁੜ ਜਾਏਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣੇਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਯੇ ਵੀ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਔਰ ਵੋ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਐਂਡ ਮਿਸੀ ਸਾਗਰ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਸੀ ਸਾਗਰ ਰੋਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3400 ਸਕੇਅਰ ਫੀਟ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਮਾਸਟਰ ਬੈਡਰੂਮ ਮੇ ਔਰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਮੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਿਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੈਸ ਕੇ 5 ਬੈਡਰੂਮ ਔਰ 5 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਈਡ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬਿਲਡਰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਕਾਰ ਗਰਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਰਨਰ ਲੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਬਿਲਡਰ ਕਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਅਗਰ ਆਪ ਯੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਯਾ ਇਸ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ ਕਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472012213, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, 6472012213। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਮੇ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਘਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਕਵਿਟੀ ਮੇ ਸੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤਬ ਵੀ ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਜੋਬ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਤੀ, ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ 6472012213। پیارے سامعین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کینیڈین فیڈرل الیکشن زوروں پر چل رہا ہے, اور اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کس, ہماری جو عوام ہے, جو پبلک ہے, وہ کس پلڑے میں اپنا وزن ڈالے گی. اس وقت لبرل کا اور کنزرویٹو پارٹی کا کانٹے دار مقابلہ ہے. کسی کہیں کہیں کسی پروونس میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کنزرویٹو پارٹی 100% آگے ہے, اور کہیں لگتا ہے کہ لبرل پارٹی 100% آگے ہے. لیکن ہم نے آج اپنے جو برمپٹن ایسٹ سے جو ہماری کنزرویٹو پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں رامونا سنگھ, ان کو ہم نے زحمت دی ہے, ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ایئر پر آ کر برمپٹن کے جو نواسی ہیں, برمپٹن کے جو ریزیڈنٹس ہیں, برمپٹن کے جو رہائشی ہیں, ان کے متعلق کچھ بات کریں, ہم سے ہمیں بتائیں. کیونکہ جو میں خود بھی چونکہ برمپٹن کا رہائشی ہوں, اس میں تھوڑی سی جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ برمپٹن میں 600,000 سے زائد رجسٹرڈ ریزیڈنٹس ہیں اور 400,000 نان رجسٹرڈ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ ٹوٹل رینٹل وغیرہ ڈال کر ٹوٹل آپ سمجھیں کہ 1,000,000 سے اوپر کی پاپولیشن پورے برمپٹن کی ہے. اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں لگتی کہ برمپٹن کو جو کینیڈین گورنمنٹ ہے فیڈرل لیول پر یا کسی بھی لیول پر آپ کہہ لیں, کہ اس کو کیوں اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ستیلا بچہ ہے. اس پوری 1,000,000 پاپولیشن کے لیے صرف ایک ہاسپٹل, کوئی یونیورسٹی نہیں. کینیڈا وائڈ کی میں بات کر رہا ہوں, کینیڈا وائڈ ہائیسٹ آٹو انشورنس, ہائیسٹ پراپرٹی ٹیکس. مجھے ایک سوال اپنے برمپٹنین کی طرف سے یا برمپٹن کے رہنے والوں کی طرف سے پوچھنا ہے, جتنے بھی یہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ برمپٹن کے لوگ کینیڈین سٹیزن نہیں ہیں؟ کیا یہ کینیڈا کے لائل نہیں ہیں؟ کیا یہ کینیڈا کے لا کو فالو نہیں کرتے؟ کیا یہ کینیڈین ٹیکس پیئر میں یا کینیڈا کی اکانومی میں ایک میجر رول پلے نہیں کرتے؟ تو ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ فنڈنگ کی اگر ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آئے, اس کی ڈویژن ہو تو وہ بھی انفیئر, ان کے ٹیکس بھی ہائی رکھے جائیں, ان کو فیسلٹیز بھی نہ دی جائیں, کیوں ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ تو ہم نے آج زحمت دی ہے رامونا سنگھ جو کہ کنزرویٹو پارٹی سے ہیں. رومانا, ہاؤ آر یو؟
I'm doing very well. Satyakal, namaskar, assalamu alaikum. It's very nice to be on your show.
Thank you so much. I have a couple of questions from my listener, actually, and from me to also, like, I have a question to you that in the beginning of the in this call you heard that I was asking why we've been treating from a long time, we've been ignored, all the Brampton's residents. We are over 1,000,000 population and have a one hospital, no university, Canada wide highest auto insurance, highest property tax and less facilities.
Yes, absolutely. I understood everything you're saying, and I feel the same pain and anxiety. And here's the issue. The issue is that when it comes to university, when it comes to health care, such as the hospital, when it comes to auto insurance, that is all provincial legislation. That is all up to the government of Ontario at Queen's Park. And what's happened? We had a Liberal government for 15 years. We've had Liberal MPPs. We've even had Liberal MPs. And we even had a Liberal mayor just recently in the last term. So what you see is in these last 15 years when our highway got canceled under Kathleen Wynne, we didn't get the funding. So the feds are giving the funding. The federal government gives grief, does transfer payments for education, and does transfer payments for health. And so the province distributes that. And here's the reality. It hasn't been done. So under now we have a conservative PC government at Queen's Park that came into government. They adopted a $350 billion debt that Kathleen Wynne's administration and Dalton McGuinty left. The interest payment on that $350 billion is $1 million every hour. Okay? So what does the government have to do to pay down its debt? It's either cut services or it increases your taxes. The worst case scenario is if it increases your taxes and also cuts services. So when we talk about the university in Brampton, what happened, if you recall, in the last election in June, the provincial election, Kathleen Wynne, a week before the election, she said she conceded the election, meaning she knew she was going to lose. So what did the Liberals do? The Liberals went and gave promises for university in so many places, a French university. They made so many promises on healthcare, but they didn't have a budget set aside, right? So they knew that they weren't going to win. They knew the next government coming in is going to look like they're canceling things. Meanwhile, they didn't leave any money for all those promises. So this is the Liberal tactic of what happened. And so now I'm running federally, right? So yeah. As a federal candidate, here's my promise to you, this alone on Queen's Park, in Ottawa, on Parliament Hill. What I'm going to do is I'm going to make sure that we get the funding that we're getting. First of all, the Conservatives have said we're going to give $1.5 billion on MRI and on equipment for the hospital. Then we're going to make, and we also committed to the funding that comes to the province. What I'm going to do is I'm going to sit with the Minister of Health, I'm going to sit with the Premier, all the ministries, and make sure I fight for Brampton. Because here's the reality. Last time Brampton got any infrastructure funding was under the Conservative Party. The Zumba that you have tens of thousands of Bramptonians taking it, that is from a $95 million investment from the Conservative Party back in 2011. The bus terminal, we built it. When it comes to the gas tax that brings millions of dollars to the municipalities, we're the ones under the last Conservative government made it into legislation that we must send it to municipalities. So we're going to go back to do responsible government again. We also index infrastructure spending. We also remove the GST when it comes to intergovernmental transfers, right? So this is what we did responsibly under Conservatives federally. This is what we're going to continue to do. And I'm going to fight when it comes to auto insurance. I already talked to the Premier. What they did was they tabled a bill right before they took recess. So they're going to be back into Queen's Park. They're going to go back at the end of October. They tabled a bill that that Bramptonians, anybody in Ontario, should get their auto insurance based on their driving history, not postal code. So when they go back at the end of October, I'm going to follow up with that, and we're going to see what's going to happen to that bill that they've put through. So we know that's the case. And, of course, I'm going to talk to the Minister of Health and see what we can do for Brampton.
That's great. Now I have a question that most people, they are thinking, but which is my opinion, that is wrong thinking, that people are thinking the Conservative Party is not in favor of immigration. So can you explain a little bit to our listener, what is your immigration policies for the new people also, or whoever living here already?
Absolutely. That is a false misconception. That is, it's a rumor that's been spread, because here's the reality. I'm an immigrant and I'm running as a Conservative. And here's the thing, under the Conservative Party, in the last, we were in government for 10 years. The highest immigration was done under Conservatives in 2011 again, and it was the highest rate in 47 years. Okay?
Yeah.
So what we do is we bring in 1% of our population, right? Mm-hmm. So Canada has 36 million people. Annually, roughly 1% come as immigrants to this country. And the reason we do this is because we have an aging population. The reason we also do this is because we have industries we must meet. So here's the difference between, so no matter who forms government in 10 days, there's going to be 1% coming in. So this is not a Liberal thing or a Conservative thing or an NDP thing. This is what Canada needs to do. So the difference between the Liberals and the Conservatives, and the reason I mentioned those two is because those two have the chance of winning, government, right? We've never had NDP form government federally. So the difference is we're saying that we want to have a fair process, that we look at what Canada needs, economic immigration, right?
Yep.
We have Conference Board of Canada says that we're losing billions of dollars in skills that are not met. Right, so there's industries that we don't have the skills. So economic immigration is very important. We need to make sure that we're matching skills to jobs. We need to also come up with a standardization. When somebody comes from a skill back home, they can get a standardization to here, whether it's a short-term, education, or maybe they can get accreditation for what they used to do because schooling's the same. Then they can actually practice their occupation and be a taxpayer. The other thing is family reunification is very important to make sure that we're supporting the families that are already free here. We always prioritize when it comes to putting family members together, spouses, children, and all that is very important to us. But we also need investors to come into Canada, right?
Yep.
And when it comes to refugees, we're also proposing that there should be a sponsor privately as well. So it's not only on the municipalities and the provinces to take care of it. If you can imagine, the federal government, what they do is they say, we're going to bring in X amount of people, right? Let's just say for asylum seekers or whatever the case is. But you know who has to deal with that? The federal government says it on the international stage. But who has to deal with that is the city of Brampton. Because it's like me standing outside of your door, right, and on the street and saying, everybody welcome to Mr. Hussein's house. He'll feed you, he'll take care of you, he'll do everything for you. And also you see an influx of people coming into your home and you have to take care of them, right?
Yep.
That's what pretty much the federal government does to the cities and the province. So what happens, the people come, and it, of course, there's the shelters that we have to house them. We have to make sure that our social services are available for them, our health care facilities. So what we need to do is we need to make sure that when it comes to refugee claims and asylum seekers, we prioritize people coming from countries that are in war-torn places. They're in, you know, suffering genocide. They're in very bad situations. But we also want to make sure that there's private sponsorship of them as well. Right? The other thing is we're going to close the loophole between the United States and Canada where if anybody walks in through an entry point that is not a regular entry point, that we would stop that. Because that's a loophole for people who need to be based, who need to be escaping war, persecution, and all those different things. And we know the United States is in and not in a war zone. So people who are walking across legal entry point is the loophole that we're going to close. Because right now we have 70,000 people who walked across the border and who are seeking to go through in front of a panel for their asylum seeking, and that's going to take about 7 years. So we have a massive backlog to deal with right now.
Okay. Last question I want to ask. The Conservative Party leader, Andrew Scheer, he said that he's going to cut down the taxes and also he's going to cut down the expending. Now, my question is here, a listener like undecided voter like me, I just want to know that what kind of cut down the expending, like they're going to affect the infrastructure, they're not going to go further progress in our society. What do you mean of less spending?
Okay, great question. So see, what you're witnessing today is a platform that's come out from a very honest leader about what the situation is, okay?
Mm-hmm.
So when the Liberals formed government in 2015, we left them $2 billion surplus in the coffers. Today, 4 years later, Justin Trudeau has put us in a $705 billion debt. That division of debt is $50,000 per household. To service that debt in the next 4 years is about 40%. So you can say about $34 million, which is exactly what a health transfer is. Remember, that's the transfer amount that the federal gives to a province to manage.
Mm-hmm.
So you can understand that to manage our debt, just like how Ontario is paying $1 million every hour, $1 billion every month to just interest payments for the debt it has, we're not that bad federally, but we don't want to get to that extent, right? This is only after one term of what they've done. So here's an honest leader, Andrew Scheer, saying we're not gonna cut on infrastructure. What he's saying is, as opposed to 12 years of the commitments, we're gonna make it into 15 years, right? Just add another few years of rolling out those projects. Why? Because we saw the federal government right now under Justin Trudeau, they didn't even get 40% of the projects that were approved the money out. So they were approving projects from the Infrastructure Bank of Canada, but not even getting the money out. So the projects were getting cancelled because the funding wasn't coming through. So they were completely mismanaging that file. So we understand that if we're going to do proper infrastructure investment, then needs to roll out properly over a period of time. Just like how when they formed government, they wanted to have, we were coming up with 10,000 to 15,000 refugees in 4 years. They were saying 50 in like 2 years. So what they do is they escalate things, but they don't meet the projections. They come up with big, massive numbers, but they don't complete it, right? Because what we understand, the conservatives, is that if you do things properly and steady and organic, then we have stability in our economy. The second thing is he's going to cut funding for foreign aid. What we saw Prime Minister Justin Trudeau do is the first 100 days he came into office, he gave $100 million away, right? We do remember that infamous tweet of $50 million to South Africa, to Trevor Noah. So he's been giving money away, right? And meanwhile, the people here, affordability is the number one issue. Every door you go to, affordability is the number one issue. So Andrew Scheer is saying is that we're going to cut on foreign aid. The other thing is he's going to also cut on corporate welfare. All the tax credit handouts that go out to corporations, like the $12 million they gave to Loblaws for their fridges, they didn't need that money. They've given billions of dollars away, hundreds of millions of dollars away to massive corporations that don't need it, but average Canadians do. So the cuts that you're hearing is about the mismanagement of what the Liberals have done. It's not going to affect infrastructure. It's not going to affect health care, social services, and all these other things that we're actually providing for.
That's great.
And also to mention those, the reason those that has come up is because he's guaranteed a promise of balancing the budget in 5 years. Mm-hmm. So if you want a government that's going to balance your budget for you, we need to look at where this Prime Minister has been wasting money, which is not in Canada, overseas, to wealthy corporations. And of course, those are the biggest problems that we're going to come back on. It's not going to be on the average Canadian who's working hard to pay their taxes.
And
one other thing I'm sorry to mention, the rate of spending of just Prime Minister Justin Trudeau's going is that he won't be able to balance the budget until 2040. So the year 2040, we're in right now in 2019,
yeah.
We're looking at 2040 the way he is doing it. We're saying we'll do it in 5 years. You know why it's important to balance the budget? Because then your children and your grandchildren are not paying the interest payment on that debt, making things more like what we're seeing in Ontario. After 15 years, look at what's happening in Ontario, right?
Yeah.
It's happening to your kids right now who are in high school. It's happening to them or to anybody right now after 15 years of bad mismanagement. So what we're saying is, and also every 10 years is, we go into a recession. When you go into $705 billion debt that we're in right now, we don't even have a cushion for the government to be able to rescue in a case of a recession that we know we're heading into. Right? So you need responsible government.
That's great, yeah. So the early election vote casting is today, tomorrow,
9 a.m. to 9 p.m., correct?
Yeah.
Today, tomorrow, Saturday, and Monday, Thanksgiving Day, October 14th, they can go from 9 a.m. to 9 p.m. The reason we urge everybody to get out and vote early this weekend is because if you wait till on October 21st, which is a Monday, you go to work, you come back from work at 7 o'clock, then you have only 2 hours to go vote. You get to the voting pool, voting location, you see long lineup, or you may not find parking in the parking lot, and it may send you back home. We don't want to miss your vote. This is a very important vote because this is a choice election. You have a choice to have Justin Trudeau back with the stress test, Justin Trudeau back with his legalization of marijuana, you can have Justin Trudeau back with his bad immigration policies, you can have Justin Trudeau back with all of his unaffordability of giving money away and not to the Canadians. You can have all of that back, or you can have responsible government back, which is with Andrew Scheer, a conservative government, and me, Ramona Singh, as your candidate for Brampton East.
Can you please give your phone number to our listener if you have someone?
Yes, please. If you live in Brampton and you're wondering where to vote in Brampton East, our boundaries are actually Highway 50, which is our eastern boundary. Mayfield's our northern boundary. Just south of Steeles, the train tracks are their southern boundary. And we run from Torbram North to Sandalwood, Sandalwood West to Bramley, and Bramley North back to Mayfield. If you're in that area and you're wondering where to vote, there's four locations. You can give us a call at the office. It's 647-400-7000. The number again is 647-400-7000. Or come to our office. It's 9990 the Gore Road. That's 9990 the Gore Road. We're at Gore and Castlemore on the third floor. Or you can also go on elections.ca on the website, which is the Elections Canada website, elections.ca. Put in your postal code and then click on where to vote. It'll tell you where you can vote this weekend.
Okay, one last question. If some people, they cannot drive, and they want to cast their vote, and or senior people, they cannot drive, is your any help available from your office?
Yes.
Your volunteer can
yes.
come and take them to the yeah, please.
Absolutely, we'd love to do it. Call our phone number 647-400-7000. You can call it if you want. You can text that number as well, 647-400-7000. Or you can send us an email at info@ramonasingh.ca, ramonasingh.ca. Either way you decide to, you know, get in touch with us, either you call us, you text us, you email us, we'll get your message and we'll come and pick you right up and take you to vote, because it's your democratic right, and this is a choice election. You get to choose what you want the next 4 years to be like.
That's great. So, Samain, Ramona Singh ka number hai 647-400-7000. आप कॉल करके रोमैना सिंह के ऑफिस में किसी भी वॉलंटियर से बात कर सकते हैं. इवन रोमैना सिंह कैन कम ऑन द फोन हरसेल्फ. आपके वोट की सही हकदार हैं और आप अगर रियल चेंज देखना चाहते हैं ब्रैम्पटन में तो अपना वोट कास्ट कीजिए और रोमैना सिंह को सिलेक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल. थैंक यू सो मच अगेन.
थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.
थैंक यू. बाय बाय. प्यारे सामाईन, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जोर जोरा है इलेक्शन का और हमारे साथ जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स राबता करते हैं इसके लिए, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और हम हर जो भी कैंडिडेट हैं उसको एक ही नज़र से देख रहे हैं, लेकिन हम हर एक का मौकफ ज़रूर सामने लाते हैं. और इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं शौकत मलिक साहब, एजेक से एनडीपी के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे हैं. वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे. हम ज़रूर उनको भी आपके साथ ऑन एयर करेंगे और उनका मौकफ भी सुनेंगे. हम पहले इससे पहले देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है. जी वेलकम टू द शो.
जी आपने बहुत प्रशस्त सवाल किए, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ. मेरा नाम शिकस्ता बनारसी है.
जी बनारसी साहब,
आप दो सवाल दो शेर आपके सामने पेश करता हूँ. खुदाया ये कैसा गजब हो गया, खुदाया ये कैसा गजब हो गया, पत्थर जमीन में नसब हो गया, पत्थर जमीन में नसब हो गया, इख्तलाज कलब की तादाद इतनी बड़ी, टूटे दिलों का मतब हो गया, टूटे दिलों का मतब हो गया, लोग कुदरत पे फिर भरोसा करने लगे, लोग कुदरत पे फिर भरोसा करने लगे, दहेजों का फिर मजहब हो गया, दहेजों का फिर मजहब हो गया. और आखिर है हमने पूछा उनसे सुए मक्तर है किधर, हमने पूछा कि सुए मक्तर है किधर, रास्ते का पूछना सबब हो गया, रास्ते का पूछना सबब हो गया. शाहजी आपने बहुत बड़ा सवाल किया. वाह
शुक्रिया.
इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं इलेक्शन पर एक हजार पढ़ूंगा.
जरूर जी. ओके बहुत शुक्रिया शिरकत का. प्यारे समय प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं. हमारे साथ एजिक्स राइडिंग से एनडीपी के शौकत मलिक साहब ने जुड़ना था, किसी वजह से वो अभी नहीं लाइन पर आ सके, लेकिन थोड़ी देर तक हम आपकी बात करवाएंगे जनाब शौकत मलिक साहब से, एजिक्स राइडिंग से एनडीपी के उम्मीदवार हैं. मैं उनका मौकफ भी आपके सामने रखूंगा. हम अपने अगले टॉक शो की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं. उससे पहले मैं अपने स्पॉन्सर का पैगाम आपकी खिदमत में पेश करता चलूं कि आइडियल किचन कैबिनेट वाले, उनका कहना है कि मिल वर्क का किसी किस्म का कोई भी काम करवाना हो तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं. उनके रابطے का नंबर है 416-414-0997. अजहर साहब 416-414-0997. किसी किस्म का मिल्क वर्क करवाना है, लकड़ी का काम जिसमें किचन कैबिनेटरी हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, होटल मोटल, लॉयर ऑफिस या फार्मेसीज, डॉक्टर्स ऑफिस, बेहतरीन डिजाइन के साथ काम करते हैं, इनके रابطے का नंबर एक मरतबा फिर 416-414-0997. और मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने अभी यस्टरडे दो लिस्टिंग की है, एक तो मैंने बहुत खूबसूरत घर फाइनेंशियल ड्राइव और मिसी सागर रोड के ऊपर किया है, 5 बेडरूम का, 2 फायर प्लेसेस लगे हुए, लिविंग रूम फैमिली रूम अलहदा, अपग्रेडेड किचन है और इसमें क्वार्ट्स लगा हुआ है, 5 बेड वॉशरूम है 5 बेडरूम के साथ, तकरीबन हर बेडरूम के साथ अटैच बाथ है। अगर आप इस घर को देखना चाहते हैं या इसके अलावा मैंने एक अपार्टमेंट लिस्ट किया है जो कि इटोबिको में है और सिर्फ 3 बेडरूम 2 वॉशरूम के साथ सिर्फ 4 लाख में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे रब्ते का नंबर है 6472012213, मैं दोबारा रिपीट किया देता हूँ, 6472012213। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं कौन है। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है। हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर लीजिए। हम अपना टॉक शो की तरफ बढ़ते हैं प्यारे सामईन। मैं आपको टॉपिक देने से पहले थोड़े से फैक्ट बताना चाहता हूँ। आजकल जो पाकिस्तान की सियासत में गर्मी आई हुई है उसके हवाले से आप सब जानते हैं कि मौलाना का जो खून है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोश मार रहा है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आप लोगों की खिदमत में एक थोड़ा सा डाटा पेश करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा टॉक शो क्या रहेगा। 1980 से पहले, 1980 से पहले शरीफ फैमिली साहब, जबकि वो जो के वो शरीफ फैमिली जो कि सियासत में नहीं आए थे, तो उनका उनकी जो फाउंड्री इत्तेफाक फाउंड्री थी वो 10 मरला के ऊपर थी, जिसमें कि उनके चचा और ताया भी हिस्सेदार थे। साद रफीक साहब जो के रेलवे मिनिस्टर रहे हैं मुस्लिम लीग के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में, वो बेचारे एक टूटी फूटी साइकिल पे घुमा, बाइक पर घुमा करते थे, मोटरसाइकिल पर। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये उस जमाने की बात है जब वो स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे एमयू कॉलेज में, एमएसएफ के प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट थे और मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म था, मैं जब से उनको जानता हूं। इसी तरह मुशाहिद साहब के बारे में मशहूर है मुशाहिदुल्ला के, ये लोडर थे पीआईए में, सामान लोड किया करते थे। खुर्शीद शाह साहब सारी दुनिया जानती है, मीटर रीडर हुआ करते थे। इसहाक डार साहब, इनके वाले साहब साइकिलें किराए पर देते थे और साइकिलों को पंचर लगाया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग एकदम मिलियनर्स हो गए? हुआ कुछ यूं कि 1981 में, मैंने 80 से बात शुरू की है, ये 81 की बात बता रहा हूं, जनाब वजीर खारजा पंजाब एक पर्सनैलिटी को लगाया गया, उनका नाम था मोहतरम नवाज शरीफ साहब। 85 में नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब बने, 88 में वजीर आला पंजाब दोबारा बने, 90 में वजीर आजम पाकिस्तान बने और 97 में दोबारा वजीर आजम बने। जबकि इस दौरानिए में उनके भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब रहे। 2008 में वजीर आला जब पंजाब उनके भाई मोहतरम रहे। 2013 में दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान रहे और इसी दौर में, इसी दौरानिए में, इसी टेन्योर में उनके भाई वजीर आला पंजाब रहे शहबाज शरीफ साहब। और फिर सवाल वही उठा कि इतना ज्यादा, इतने थोड़े अरसे में इतना ज्यादा पैसा कमा लेना, क्या खुदा की कुछ खास मेहरबानियां रही या अल्लाह की कुछ खास मेहरबानियां रही या अब्दुल्ला की मेहरबानियां रही? अब ये क्वेश्चन मैं आप ही पर छोड़ता हूं, यही आज का हमारा टॉक शो रहेगा कि मुझे बताइए कि $3 बिलियन उधार लिया गया, लोन लिया गया है पाकिस्तान को चलाने के लिए राइट नाउ, जबकि अकेले खुर्शीद शाह साहब के एसेट $3 बिलियन से ज्यादा हैं। वाह कैसी तरक्की करता है पाकिस्तान की अवाम। हम कहते हैं कि यहाँ हम रात दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से 25 साल में, वो भी कोई की खुशकिस्मत है तो अपना सिर्फ एक घर ही उतार पाता है पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हुए। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं लगती कि अल्लाह मेहरबान है या अब्दुल्ला मेहरबान है। आप कॉल कीजिए स्टूडियो में, अपनी राय दीजिए कि ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तरक्कियां कैसे हुई हैं 80 से लेकर सिर्फ 18 से 20 साल के दरमियान, 20 से समझ लीजिए 20-35 साल समझ लें के दौरान, के ना सिर्फ ये कि वो लोग जो के आप समझ लें कि कखपति थे पंजाबी में कहें, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो लखपति बन गए। और ये कैसे मौजूदाती तौर पर हुआ है इसकी जो राय है वो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। स्टूडियो में कॉल करके अपनी राय दीजिए, स्टूडियो का नंबर है 416-620-1778। मैं रिपीट करता हूँ, स्टूडियो का नंबर 416-620-1778। इसके अलावा सामीन में ये भी बताता चलूँ कि हमारे साथ एक क्लाइंट कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं हमारे साथ वो कौन है। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है।
जी सलाम अलैकुम कासिम भाई और तमाम सुनने वालों को भी सलाम और आदाब।
जी वालेकुम अस्सलाम। प्यारे सामईन मैं ये बताता चलूं कि जैसा कि इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी की कोई भी अनाउंसमेंट है उसके लिए आप सबको वेलकम है। सुहेल साहब एक कम्युनिटी की बड़ी ही जबरदस्त अनाउंसमेंट लेकर आए हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ मेरी अपनी राय भी इसमें यही शामिल है कि जिसमें शरीक होना आप सब पे ना सिर्फ ये कि जरूरी है बल्कि वाजिब समझता हूँ मैं, इसलिए कि ये एक प्रोटेस्ट होता है। किसके खिलाफ है ये प्रोटेस्ट, ये सुहेल साहब एक्सप्लेन करेंगे किसके खिलाफ है ये एहतजाज, ये सुहेल साहब बताएंगे। जी सुहेल साहब क्या कहना चाहेंगे सर?
जी जनाब बहुत शुक्रिया कासिम भाई। मैं जो एक हदीस से इसका आगाज करूंगा।
जी
बिस्मिल्लाह की एक हदीस है, मोमिनीन के दिलों में इमाम हुसैन की शहादत की ऐसी हरारत है जो कभी ठंडी नहीं होगी कभी खामोश नहीं होगी।
जी
देखिए दुनिया में कई इंकलाब आए हैं और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आप देखें तो अक्सर का नाम सिर्फ किताबों में रह गया या किताबों में नहीं मिलता।
जी
करबला को 1400 साल तकरीबन अर्सा गुजर गया है और हर दौर से जालिम हाकिम ने इस जिक्र को इस इश्क को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन इस हदीस के एन मुताबिक अगर आप देखें कि ये ना तो इश्क खत्म हुआ है ना कम हुआ है बल्कि हमेशा ये जिंदा जावेद है और हमेशा बढ़ता रहा है। जैसे कि आपको मालूम है सामीन और मुसलमीन कि हर साल तकरीबन 20 मिलियन लोग जो है वो करबला में तजदीद अहल वफा करने के लिए हाजिर होते हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए हाजिर होते हैं, हालांकि वहाँ बहुत कम इंतजाम हैं। इतने 20 मिलियन लोगों के लिए इंतजाम कतई नहीं, मैं खुद जा चुका हूँ और बहुत मुश्किल होती हैं, खतरात हैं, आपको पता है इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इराक की, इसके बावजूद लोग जो पर जो बिला तफरी के मजहब कौम रंग नस्ल हर मजहब के लोग क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम बहुत जीवन हर तरह के लोग जो है वहाँ हाजिर होते हैं। ये इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दलील है। हम जो है यहाँ ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके बारे में अभी डिटेल थोड़ी बताऊंगा, ये बस वो जो जायरीन वहाँ जा रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं पहुँच सके किसी भी वजह से, जैसे हम दूर से ज्यारत पढ़ते हैं इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह के लिए या उनके अहले बैत के लिए, ये भी उसी तरह वहाँ जो पैदल चलने वाले हैं लोग। एक बात मैं बताता चलूँ कि सामीन ये जो पैदल चलने वाले लोग हैं ऐसा नहीं कि इनके पास किराया नहीं होता, इनके पास इंतजाम नहीं होता कि वो गाड़ियों पे या बाहर वहाँ जा सके, वो सिर्फ इस तजदीद अहल वफा और इश्क इमाम हुसैन में सैकड़ों मीलों का जो है वो सफर करके आते हैं। जैसे नजफ से करबला का रास्ता भी अगर देखें तो 85 किलोमीटर है, जो 3-4 दिन में लोग जो है वो दिन रात सफर करके पहुंचते हैं और उनके पाँव में छाले और पाँव सूजे हुए होते हैं और फिर जो वहाँ लोग इनकी मेहमानदारी करते हैं वो भी जो है बहुत ही इश्क अफजा जो है मंजर होते हैं कि वो इनके पाँव जो है वो इनके जूते पॉलिश करते हैं, इनके पाँव की मालिश करते हैं, इनको हर तरह के खाने ऐसे वाकयात देखे हैं मोहतरम सामीन के बहुत गरीब लोग जिनके पास पूरे साल का खाने के इंतजाम नहीं होता वो भी पूरे साल जमा करते हैं कर्ज लेते हैं और कहते हैं कि हम इन जायरीन की जो है वो इनके लिए कोई खिदमत कर सकें, इनको कुछ पेश कर सकें, खाना दे सकें, इनको रहने का बंदोबस्त कर सकें। इस वजह से ये 20 मिलियन लोग वहाँ जाते हैं। हम यहाँ ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका नाम है अरबईन वॉक, ये संडे अक्टूबर को है, संडे को 1 बजे पैचन एवेन्यू जो है लेक शोर और उससे शुरू होगी और सिटी हॉल यूनिवर्सिटी रोड पे ये खत्म होगी। जैसे कासिम भाई ने पहले गुजारिश की है कि इसमें तमाम लोगों को शामिल होना चाहिए, बिला तफरी के मजहब हर जो है आजादी पसंद इंसान है, क्योंकि इमाम हुसैन का ये जो एहसान है ना पूरी इंसानियत में।
जी, क्योंकि हुसैनियत ना तो सिर्फ मुसलमानियत है ना मोमनियत है बल्कि ये इंसानियत है। हुसैनियत का नाम ही इंसानियत का, यानी ये किसी भी मजहब के लिए मखसूस नहीं है, ये अमूमी वाक होगी, हर एक को इसमें वेलकम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो जू है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है। आप आइए और आकर अपना नजराना अकीदत इमाम के हजूर पेश कीजिए। तो सुहेल भाई ये बताइए हमारे जाने वालों के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो तो किससे रब्ता करें, वो फोन नंबर दीजिए प्लीज।
जी, फोन नंबर मेरा हाजिर है 6474057712। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है arbainwaq.ca। इसके अलावा ये फेसबुक और सोशल मीडिया भी मौजूद है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। फिर मेरा नंबर है 6474057712। इसके अलावा जो है हमने बसेस का इंतजाम किया मुख्तलिफ शहरों से, ब्रैम्पटन से, मिसागा से, ईस्ट साइड से भी, तो वहाँ इन बसेस के जरिए आप जो है अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। हम इनकी लोकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी।
बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर जाने से पहले अपना नंबर रिपीट कर दीजिए,
6474057712।
सो ये संडे के रोज है, नॉट दिस संडे, एक तो कल है संडे वो नहीं बल्कि नेक्स्ट संडे को होगी ये वॉक 1 बजे। और दोबारा एक मरतबा इसकी लोकेशन काइंडली बता दें हमारे सुनने वालों को।
ये लेक शोर और स्पेक्टन एवेन्यू है, जो एग्रीबिशन प्लेस है उसके बिल्कुल साथ, वहाँ से शुरू होगी, 1 बजे वहाँ जमा होंगे और वहाँ नमाज वगैरह होगी, उसके बाद जो है वहाँ से वॉक शुरू करेंगे, उसमें पोएम्स हैं, स्पीचेस हैं रास्ते में और नोहा पढ़ा जाएगा, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और सिटी हॉल पे यूनिवर्सिटी रोड पे वहाँ ये खत्म है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया
जी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं लाइन पर। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कौन सा बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं डॉक्टर आमिर चीमा बोल रहा हूँ।
जी चीमा साहब क्या कहेंगे सर?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपका प्रोग्राम सब लोग सुनते हैं, छोटे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं।
जी नवाजिश।
हर किस्म के लोग हैं, प्रोफेशनल भी सुनते हैं, सारे सुनते हैं और ग्रेट रेडियो सभी के सुनते हैं और सारी पार्टियों के लोग सुनते हैं।
जी जी।
ये कोई मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी के लोग नहीं सुनते, सारे सुनते हैं।
जी जी।
मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब कर रहे होते हैं प्रोग्राम या बात कर रहे होते हैं तो डबल स्टैंडर्ड प्लीज ना रखा करें।
जी।
आपने शुरू में ये कहा था कि मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है।
जी।
तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपने बात ही शुरू की श्री फैमिली से 1980 में फैमिली थी, साथ साथ साइकिल से घूमता था, फलाना लोडर था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि उनकी 1980 में फाउंडिंग नहीं थी। डूइंग बिजनेस इन द मोर देन 100 ईयर इन पाकिस्तान, आई नो वेरी वेल एंड आई हैव डीप रूटेड इन पाकिस्तान एंड कनाडा एज वेल। तो दूसरी बात आपको ये बताऊं कि आप सबका नाम ले ना, फिर आप जहांगीर तरीन का भी नाम ले, आप उसका भी ले, आदम साथी का नाम भी ले।
जी जी।
वो उनके पास क्या होता था, फिर आप सबका नाम ले, उनको बताए लोगों को उनके पास क्या होता था।
बिल्कुल ठीक है।
फिर होता है कि आपका वो बंदा कहते हैं किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है।
सही है। मैं कर्ज करता चलूं, मैंने इसमें नाम लिए हैं जो खुशी शाह साहब है पीपल्स पार्टी के, वहाँ आपका कहना मैं जहांगीर तरीन भी है इसमें शामिल है।
आपने खुर्शीद साहब मुझे पता लिया क्योंकि आई नो वेरी वेल, तो वो खुर्शीद साहब क्योंकि वो नहीं है पीटीआई के, नहीं है और
नहीं, ऐसी बात नहीं है, पीटीआई भी जो है ना वो दूध की धूली नहीं है और उनके भी कारनामे बिल्कुल लोगों के सामने हैं। असल में बात ये है, बात ये है,
छोटी
मुख्तस रखिएगा प्लीज क्योंकि लाइनें बड़ी सारी। जी
जी, मेरे क्लास सर पीटीआई में भी है, लाहौर से लड़के लड़ते हैं चीमा साहब, जैसे चीमा इज माई क्लास सर, ये भी लॉट ऑफ पीपल दे नो हिम। वो अभी एक अरबपति होता है ना, वो खरबपति है, खरबपति। तो वो उसने साल 2000 में बिजनेस शुरू किया, 2000 में, सिर्फ 2000 में। मेरा
यही क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि आप भी एक मेहनती और प्रोफेशनल आदमी हैं और आपने इतनी मेहनत की है कि कनाडा भी आना पड़ा सब कुछ के, हम पर इतनी अल्लाह की मेहरबानी क्यों नहीं है जो इन सियासतदानों पर है, मेरा यही क्वेश्चन था मेरा ये सवाल। आप देखें ये फैमिली शरीफ फैमिली का नाम मैंने इसलिए लिया है कि वो सबसे ज्यादा इक्तदार में रहे, सबसे ज्यादा वो ही इक्तदार में रहे और इसको सबसे ज्यादा अमीर है।
इक्तदार में कभी पैसा नहीं आता,
चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, आपके व्यू सबने सुने जी, वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं?
हमजा बात कर रहा हूँ, क्या हाल है जी आपका? ठीक है
जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से हमजा साहब हैं, ये जरदारी साहब हैं?
नहीं, हमजा खान साहब।
अच्छा खान साहब कैसे हैं जी?
शुक्र अल्लाह का, शुक्र।
क्या कहना चाहेंगे सर?
मैं तो एक्चुअली काफी टाइम से आपका रेडियो सुन रहा था, तो बात एक्चुअली जो मैंने करनी थी वो पिछले भाई ने करी थी कि आप जो है ना वो एक बैलेंस साइड लेकर नहीं चल रहे होते।
अच्छा ठीक है,
क्योंकि आप एक ही चीज को ब्लेम आउट कर रहे होते हैं और दूसरी चीज को पीछे छोड़ रहे होते हैं।
जी चले बहुत शुक्रिया। मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि देखें मैं जो सबसे ज्यादा लोग इक्तदार मेरे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी का हामी नहीं हूं। मैं जहांगीर तरीन साहब को भी कहता हूं कि उनको देखें कि वो कहां से कहां पहुंचे, सवाती साहब को देखें कि उन्होंने क्या जुर्म नहीं रवा रखा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की फेवर में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि सबसे ज्यादा इक्तदार में रहने वाले सबसे अमीर क्यों हो जाते हैं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है।
जी अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई।
वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं सर?
मैं कामरान बोल रहा हूं।
जी सर क्या कहना चाहेंगे कामरान सर?
मैं सर जी ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे हिसाब से, तो मैं आपका प्रोग्राम बड़े गौर से सुनता हूं, बड़ा बैलेंस प्रोग्राम होता है सर।
बड़ी मेहरबानी सर जी,
बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन सिर्फ आप जस्टिस करते हैं। अब वो जो लोग कॉलर आए उनके मुताबिक तो नहीं प्रोग्राम होता, तो उनको अच्छा नहीं ना लगेगा ना। ये बात है, वो हर बंदा अपने मुताबिक प्रोग्राम सुनना चाहता है, और ऐसी बात कोई नहीं है। बिल्कुल जो देखिए जिन्होंने करप्शन की उनके मुताबिक की बात होगी ना, दूसरों के मुताबिक नहीं होगी। सबसे ज्यादा ये इकतदार मिले बेड पार्टी और नून वाले, और ये क्यों दी राहुल भाई हमारे सामने इनकी हेल्प करते रहे हैं, साध रफीक वगैरह की इनके घर से मेरे हमारे पैसे जाते रहे, इनका वजीफा लगाया हुआ था यार हमारे सामने, कैसी बातें ये करते हैं।
मैं वही तो कहता हूँ, मेरे सामने की बात है, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, तो ये हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते
थे, यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, मोटरसाइकिल पे यार घूमते थे यार, ये साथ रफीक वाले ये कैसी भाई साहब, तो मैं उनकी बात उनके
बारे में मैं उनकी भी राय का एहतराम करता हूँ।
अनबिलीवेबल, जिन्होंने ना करप्शन किया बिल्कुल सही उनको हाईलाइट करते हैं। ये देखे खुर्शीद शाह साहब मीटर रीडर थे जनाब साहब, को किसको नहीं पता है जी, यहाँ जरदारी जो अपना सैनमो में टिकने जो करते थे हैं जी आपके साथ नहीं है जी, ब्लैक करते थे, नकल लगवाते थे मेडिकल कॉलेजों में, दूसरे कॉलेजों में, सब किसी को सब समय यहाँ है ये चीज।
बहुत शुक्रिया,
बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम और बड़ा बैलेंस।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
और यही हक साझा की आप सब लोगों को जागर करते रहे, बस ऐसे।
थैंक यू सो मच भाई, प्रोग्राम की पसंदीदा शुक्रिया। मैं उन साहब की भी कॉल का एहतराम करता हूं, उनके भी व्यूज का, क्योंकि हर एक अपने व्यूज रखने का डेमोक्रेटिक राइट रखते हैं। जी वेलकम टू द शो।
हेलो मैं कहां बोल रहा
हूं? आप रेडियो पर बोल रहे हैं जी? कामरान साहब कैसे हैं?
अस्सलाम वालेकुम, मैं कहां बोल रहा हूं, आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि आपको बहस नहीं करना चाहिए, आपको जो प्रोग्राम जो टॉपिक है उसी पर बात करें ना।
जी जी बताइए कामरान साहब क्या कहना चाहते
हैं। यहां पे बहस का तो वो है नहीं ना सर ना।
जी जी
आपको सिर्फ बात नहीं करना, जो टॉपिक है उसे बात करनी है।
जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे।
मेरे पास एक बात और है, मैं चाहता हूँ कि कोई ना मुस्लिम कम्युनिटी का नंबर चाहिए मेरे को।
मुस्लिम कम्युनिटी का नंबर चाहिए? किस सिलसिले में चाहिए मुझे बताइए, मैं ताकि उसके मुताबिक अभी बताता हूँ आपको।
आप ऐसा कीजिए
आप अपना नंबर बताइए, ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करे इसके लिए आप अपना नंबर अनाउंस कर दीजिए।
6471 6511 6411।
कामरान साहब को कुछ हेल्प चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी से, काइंडली इनको कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी वेलकम टू द शो, आपकी आवाज में आपको वेलकम है।
अस्सलाम वालेकुम साहब।
जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे
हैं? सर डॉक्टर सईद बात कर रहा हूँ मैं ब्रैम्पटन से।
जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सर?
सर मैं तो कुरान की एक आयत है बड़ी बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली, सुम्मन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम اس کے لیے میں خیر تشریح ترجمہ کافی ہے سننے والوں کے لیے تو اب یہ کہ اکنوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں جو کوئی بھی ہے, بات یہ کہ آپ کا بڑا اچھا شو ہوتا ہے, مطلب
پروگرام کی پسندیدہ کا بہت شکریہ. اس کے بعد ہم ایک لاسٹ کال لیں گے اور میرے پاس مزید دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے. جی ویلکم ٹو دا شو, آپ کی آواز میں آپ کو ویلکم ہے.
کاشم بھائی اختر بات کر رہا ہوں.
جی اختر صاحب کیسے ہیں سر؟
بس ٹھیک ہے, اچھا ٹاپک ہے آپ کا اور اس پہ جتنی بھی لعنت دی جائے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کم ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو سیاست ہے وہ بزنس ہے, وہ ٹوٹل بزنس ہے, پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد بن جاتے ہیں کرپشن کنگ اور خوب امیر ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے, اسی لیے پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں. اور تو یہ ٹوٹل کرپٹ بزنس ٹو بیکم اے پولیٹیشین اور اس میں عہدے پہ آنا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سندھ میں ایک بچے کو کتے نے کاٹا اور وہ تڑپ رہا ہے اپنی ماں کی گود میں, ماں رو رہی ہے اور اس کی دوا نہیں ہے.
جی
تو اس کتنی افسوس کی بات ہے کہ کتنا کھاتے ہیں یار, اتنا کھاتے ہیں کہ یعنی کہ بالکل ہی نہیں چھوڑتے, اتنے ہڈ رام اور کیا کہنا چاہیے کرپٹ لوگ بسے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو آپ صحیح ٹاپک آپ نے لیا ہے, اچھا ایکسپوز کریں ان لوگوں کو جو کرپشن میں انوالو ہیں اور کھا رہے ہیں. اور یہ ٹوٹلی یہ بزنس پالیٹکس میں آنے کا ٹوٹلی بزنس ہے اور ان کو اللہ سزا دے گا, ہم تو کیا دے سکتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. میں مزید کالیں اب نہیں لے پاؤں گا, چاہے لاسٹ کال ہم لے لیتے ہیں جو کہ بلنک ہو ہی گئی ہیں. تو جی ویلکم ٹو دا شو, آپ کی آواز میں آپ کو ویلکم ہے.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. ذرا بالکل مختصر رکھیے گا, میرے پاس ٹائم نہیں.
مختصر یہ ہے کہ چائنا میں 500 اگر لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں
جی
تو ان کو سزا دیتے ہیں.
جی
پاکستان میں انہوں نے فضل الرحمان کو ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے, تو ان کو بھائی کنٹرول میں ایک رکھو اور ڈرا دمکا کر رکھو,
جو پکڑے گئے ان کو بھی چھڑا لے.
ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ورنہ جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے. جب تک وہاں پہ پاکستان کو لوٹنے والوں کو سزا نہیں دیں گے ان سے جان نہیں چھوٹے گی. دیکھیے اب تھانا کلچر ہے ان لوگوں کے کنٹرول میں, چائنا میں تھانا کلچر کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کو رضا دی ہے. پاکستان میں پچھلے 72 سے تھانے ان کے متحد تھے, وہاں سے ہی یہ سارا کام شروع کرتے ہیں. کرپشن تو خود کرتے ہیں لیکن اندرون میں پاکستانی بیچارے وہ آزاد نہیں ہیں, ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے ہیں. تو پلیز میں جو ہاتھ چھوڑ کر ہر ایک پاکستانی بہن بھائی سے جو سن رہے ہیں کہ بھائی ان سے چھٹکارا ایک دلوائیں تھانا کلچر سے, ان جو کرپشن کے مافیا ہے.
بہت شکریہ,
ایسی ایسی سخت سزائیں ہو تاکہ آنے والے ایک ڈرا رہے.
بہت شکریہ,
میرا بھی ایک جس طرح چائنا میں حال ہوتا ہے وہ ہوگا.
چلے بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. میرے پاس مزید وقت نہیں بچا ہے, جانے سے پہلے میں آپ کو گزارش میں پھر ایک بار عرض کرتا چلوں کہ میری جو لسٹنگ آئی ہیں کل اس کو دیکھنا ہو یا کسی بھی لسٹنگ کو دیکھنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 6472012213. اور میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت نعت ہے آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں, اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, رابطے کا نمبر ایک مرتبہ پھر 6472012213. اللہ حافظ.
میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے, مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنج تن کا غلام
مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, مجھے عشق ان کے وطن سے ہے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق شاہ زمن سے ہے, میں تو پنج تن کا غلام
کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات انہیں کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, جنہیں باب صلی اللہ کہے, وہی جن کو آل نبی کہے, وہی جن کو ذات علی کہے, وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں,
میں قمر ہوں شاعر بے نوا, میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا, وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ, میں ہوں ان کے در کا بس ایک دادا, میرا پنج تن سے ہے واسطہ, میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ, میں فقیر خیر انا ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام.
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
जस्टिन ट्रूडो और लिबरल अपराधों पर नर्म है. एंड्रयू शियर की कंजर्वेटिव सरकार अपराधों से सख्ती से निपटेगी, शुल्कों को कम करेगी और आर्थिक विकास पर ध्यान देगी. कृपया 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान में कंजर्वेटिव के प्रत्याशियों को वोट दें.
घर नवा है या पुराना, ओदे विच वधिया शेड लगे होण तां होर भी खूबसूरत हो जांदा है. कैलिफोर्निया शटर ब्लाइंड वर्टिकल रोलर शेड्स हनीकैम्स प्लीटेड शेड्स, इस तों अलावा किसी भी तरह के पर्दे लाना चाहते हो तां इन्हां नाल संपर्क करो. पिछले 30 साल का तजर्बा खूबसूरती वधाउण दे नाल नाल घर दा बिजली दा बिल भी घट आवेगा. द ब्लाइंड शेड आउटलेट डॉट कॉम ते संपर्क करो या फिर 416-803-1043-1043 द ब्लाइंड शेड आउटलेट डॉट कॉम.
Sweet Mahal, the East Diwali Lagraya Machhaiyan da Mela, Thora Khauji, Par Khao Badiya, Sweet Mahal to Loud, Dry Fruit, Desi Kyo Diyan Baniyan Jalebiyan, Sweet Mahal Special Decorated Dabbe, Poncho 688 Rexdale Boulevard, or call 416-679-9191, Celebrate Diwali with Sweet Mahal. Adnan Bashir of Cityscape and Buzzmax .ca present Living Legend Ustad Rohak Fateh Ali Khan live in concert. On Friday, October 18, 2019, at Royal Thompson Hall, Toronto. For tickets and sponsorships, call 416-989-8555 or visit RoyalThompsonHall.com.
खरीद फर्नीचर रास्ते से, ना लेना सूट डॉलर मार्ट से, ना पीना बासी कॉफी अच्छा लगता नहीं। ना बनाओ इंटर्न का सीईओ, ना खिलाओ फास्ट फूड क्लाइंट को, ना लगाओ मस्त का बॉस को, अच्छा लगता नहीं। हमें मिलता है वही जो हम चाहते, यूज़ ओरिजिनल रेट पे थारर चिंता होगी दूर।
100% रिलायबल, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ऑलवेज ट्रस्ट ओरिजिनल रेट पे थारर।
जस्टिन ट्रूडो और लिबरल ने सारे मकान खरीदारों के लिए मॉर्गेज तनाव टेस्ट थोपा। एंडोशियर की कंजर्वेटिव सरकार नए मॉर्गेज तनाव टेस्ट को दूर कर ब्याज के बोझ को कम करेगी। कृपया 21 अक्टूबर को होने वाले मतदान में कंजर्वेटिव के प्रत्याशियों को वोट दें।
ऑथराइज्ड बाय द ऑफिशियल एजेंट ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा।
पहली बार जब प्यार किसी से होता है।